ओम शांति। 8 अप्रैल 2017 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 24 मार्च 1982 के महावाक्य है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। 8 बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है यह सबका पोता मेल देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। जीवन अर्थात सदाकाल, जीवन में सदा रहते होना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना, इसको परखने का यंत्र जानते हो, सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो, मनसा संकल्प में पवित्रता है उसकी निशानी, मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आश बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन बातों को सुलझाने में लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, फुटस्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो, यह ब्रह्मा आचार्यों का चित्र है। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं, दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते हैं। अपना चित्र देखा है ना, तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया। सदा सुख और शांति की निशानी है सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे। वह सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों क्या कैसे ही होती है, तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उनके अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, तो समझा कैसे चेक करना है। सुख शांति की प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, वह अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। स्वपरिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया, फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है वह आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा। जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं, तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी। युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। उसको सतो प्रधान, उसको सतो कहते हैं, जिसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। यह लगाने नहीं आता, लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। अपने पर भी हंसी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं, मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अच्छा, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति कराने वाली, अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो, इस मंत्र को जीवन में लाने वाले ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभवों में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टी के साथ सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब, सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब होना। जैसे रूहे गुलाब का नाम मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रूहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है ना। इस रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए, बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर वन रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात एक नंबर में आना है, यही सदा लक्ष्य रखो। ब्रैकेट में दीदी जी दिल्ली मेले की ओपनिंग में जाने की छुट्टी ले रही है, तो बाप दादा बोले सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना। याद में स्नेह में सहयोग में सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। यह भी ड्रामा में बाय प्लॉट्स रखे हुए हैं, तो अच्छा है। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं है, वैसे आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई है, इसलिए आने जाने में सहज होता है। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। थोड़े समय में भासना अधिक देने का, तो यह हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो, यही स्मृति स्वरूप बना कराना। आवाज फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा, सबके माइक दिल्ली में ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी, तो भारत की नेताएं भी जागेंगे। उसकी तैयारी के लिए जा रही हो ना। अव्यक्त मुरली से प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, अपने व दूसरी आत्माओं के संकल्प को जज करने वाले जस्टिस कौन बन सकते हैं? उत्तर है, जिनकी बुद्धि का कांटा एकाग्र है, कोई भी हलचल नहीं है, निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, जिनके बोल और कर्म में लव और लॉ का, स्नेह और शक्ति का बैलेंस है, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। दूसरा प्रश्न है, लौकिक जस्टिस और आप रूहानी जस्टिस की जवाबदारी क्या है? उत्तर है, लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म या उसका कुछ समय व्यर्थ गवा सकते हैं, कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख ना सकें तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार पर बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र रह सकता है? उत्तर है, स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होंगे उनकी बुद्धि का कांटा एकाग्र होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे, उनके सामने कैसी भी तड़पती हुई प्यासी आत्मा आएगी तो उसके प्राप्ति की इच्छा को परख कर उसे भरपूर कर देंगे। ऐसे एकाग्र बुद्धि वाले ही यथार्थ व संपूर्ण जजमेंट दे सकते हैं। चौथा प्रश्न, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज कब रह सकती है? उत्तर है, जब स्वयं युक्ति युक्त संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है, तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। ऐसी स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। पांचवा प्रश्न, मुख्य किन चार संबंधों के आधार पर चार धारणाओं व चार स्लोगन्स को सामने लाऊं तो सहज संपन्न बन जाएंगे? उत्तर है, एक बाप, दूसरा टीचर, तीसरा सतगुरु और चौथा साजन। इन चार संबंधों के आधार से मुख्य चार धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमान बरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी और साजन के संबंध में वफादार। इसके साथ साथ चार स्लोगन्स भी स्मृति में रहें। बाप के संबंध में स्लोगन है, सन शोज फादर अर्थात सपूत बन, सबूत देना है। शिक्षक के रूप में स्लोगन है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। गुरु के रूप में स्लोगन है, जहां बिठाएं जैसे बिठाएं, जो सुनाएं जैसे सुनावें, जैसे चलावें जैसे सुलावें। और साजन के रूप में स्लोगन है, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही से श्वासोश्वास साथ रहूं। यह सभी बातें अपने सामने लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो तो संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ ताल तालियों में आकर्षित हो जाते हैं, कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को। क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और ताल तालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है, माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।